लोग ने पिछली बार चर्चा किया था, जहां पे बात रुकी थी कि भगवान काष्ट में अग्नि के समान है ना, याद आ रहा है आपको। और प्रभुपाद जी ने समझाया था कि जैसे अग्नि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा प्रकट होती है, उसी प्रकार से वैध श्रवण कीर्तन जो प्रमाणिक रूप से हमें प्राप्त होता है, वैसे जैसे भी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो वह पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं के अनुसार है। तो वैध श्रवण कीर्तन की विधि के द्वारा वह भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। अन्यथा जैसे आप लकड़ी में अग्नि जानते हो कि लकड़ी है और सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं होती है जब तक कोई प्रक्रिया ना की जाए। ये बात आपको याद है, हमने चर्चा किया था। एक और बात है कि अग्नि का स्वरूप लकड़ी से बिल्कुल भिन्न है, ये बात समझ में आती है। लकड़ी बिल्कुल अलग है और अग्नि का स्वरूप बिल्कुल अलग है। तो उसी तरह से परमात्मा विभिन्न जीवों के शरीर में रह रहे हैं, लेकिन परमात्मा का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। वह उनके भौतिक शरीरों पर निर्भर नहीं करता। जैसे लकड़ी किसी भी तरह की हो, अग्नि तत्व जो है वो लकड़ी के रूप पे निर्भर नहीं करता है। ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि जब लकड़ी जलती है तो कोई गोलाकार अग्नि है ऐसे करके है, लेकिन अग्नि वही है। और एक अच्छी घटना भी हुई, जैसे कार्यक्रम के बाद आरती हुई तो मैंने एक भक्त से पूछा कि प्रभु जी, इस अग्नि में जो मोमबत्ती की अग्नि है और ये जो आरती वाली अग्नि है, उसमें सेम है कि अलग है? कहते हैं अलग है। एकदम से उनके मुंह से निकला कि अलग है, जबकि मोमबत्ती की अग्नि जो है और जो घी की अग्नि है, उसमें कोई भेद नहीं, अग्नि वही है। समझ में आ रहा है? तो हम इस प्रकार से कभी कभी सोच सकते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में नहीं है। और ये बात आप कहोगे हम तो ऐसा नहीं सोचते, आप प्रभुपाद जी का एक वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद जी एक क्रिश्चियन पादरी से बात कर रहे हैं और क्या सोचते हैं पता है? कह रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं है। आपने शायद देखा होगा उस पर वीडियो, ऐसा वो मानते हैं कि जानवर में आत्मा नहीं, इसलिए उनको कमार के काट के खा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा छोटा बच्चा भी तो बोलता नहीं है, तो क्या तुम ये मान लोगे कि उसमें भी आत्मा नहीं है? छोटे बच्चे में और जानवर में क्या अंतर है ना? हम अपने बच्चे को तो नहीं मार के खा जाते। तो इस प्रकार से ये केवल मान लेना और उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं होना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो आप ऐसा कभी कभी सोचेंगे नहीं, हम लोग तो नहीं सोचते कि भगवान सबके हृदय में नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान सबके हृदय में नहीं है, केवल इंसानों के हृदय में, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। खैर, अब हम यहाँ पे बात, प्रश्न एक आता है कि सबके शरीर में प्रवेश करके भगवान कर क्या रहे हैं, क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो ये जो श्लोक है इनका, ये उस बात का उत्तर है जो 6 प्रश्न थे ना हमारे, तस्य कर्माणि दाराणि सूर्य भी। तो जो सूर्य भी लोग हैं, नारद आदि जो लोग हैं, वे भगवान के उदार कर्मों का गुणगान करते हैं। तो ये जो आज के श्लोक हैं, ये दिखाते हैं भगवान क्या उदार कर्म कर रहे हैं। हाँ, मतलब उनमें से 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि भगवान की क्या उदार कर्म करते हैं। तो भगवान के ये उदार कर्म में श्री लक्ष्मीदास स्वामी कहते हैं जगत सृष्टि आदिनी, जगत आदि की सृष्टि करते हैं। तो उसको अभी हम तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भी देखेंगे कैसे सृष्टि करते हैं, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सृष्टि करके कर क्या रहे हैं। तो आज हम भगवान की भोग लीला का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान की भोग लीला अर्थात भगवान भोग नहीं कर रहे हैं, कैसे जीवों को भोग की व्यवस्था करा रहे हैं, वह हम इस श्लोक को देखेंगे। ठीक, हाँ 34 हमें पढ़ना है ना, 33 करना है। असौ गुणमयैर्भावैर् भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ठो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ मतलब वे परमात्मा, कौन से परमात्मा? जिनका वर्णन अभी पिछले के श्लोकों में हुआ, वही वासुदेव हैं, वही जगत के सृष्टा हैं और वही सब जगह विद्यमान हैं अग्नि के समान। और वह कह रहे हैं गुणमयैर् भावैर्। देखिए, गुणमय मतलब ये जगत गुणमय कहा जाता है, अग्निमय, तेजोमय, ये शब्द समझते हैं आप, तेज से ही बना हुआ, जलमय, जल से ही बना हुआ, ये बात समझते हैं, शब्द समझ रहे हैं, हिंदी के शब्द है। तो गुणमय का अर्थ क्या हुआ? गुण से ही बना हुआ, रजगुण तमगुण और सत्वगुण से ही पूरा जगत की सृष्टि हुई है। जैसे आप जानते हो टीवी की स्क्रीन में केवल तीन डॉट होते हैं, ये पता है आपको बात, आर जी और बी, रेड ग्रीन और ब्लू। भले ही आपको बहुत सारे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, वहां हीरोइन दिखाई पड़ रही है, हीरो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, वस्तुतः केवल तीन डॉट है जो हमको उल्लू बना रहे हैं। उसी प्रकार से जगत में विविधताएं, यहां वैरायटी देखते हैं, लेकिन वस्तुतः वे तीन गुणों का सम्मिश्रण ही है। मैं उदाहरण के द्वारा समझा दे, समझ में आ रही होगी बात, ठीक। भावेक अर्थात प्रभुपाद बड़े स्वाभाविक रूप में, यानी अपने स्वरूप में भगवान प्रवेश करते हैं। फिर कह रहे हैं भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, उससे वो उत्पन्न करते हैं क्या, इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को। सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार, और इंद्रिय मतलब आंख नाक कान जो आप देखते हैं, वो सब निर्मित करते हैं। और आत्म भी, यानी जीवों के द्वारा स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः, जो सृष्टि उन्हें स्वयं निर्माण करी है उसमें प्रवेश करते हैं भगवान। और क्या कहते हैं, भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, और उन गुणों को जीवों को उन गुणों का भोग करवाते हैं। फिर से रिपीट किया जाए, भगवान, वही भगवान परमात्मा इस जगत में प्रवेश करते हैं। वह जगत कैसा है, गुणमय जगत, हाँ, सच्चिदानंद नहीं है ये जगत, गुणमय जगत है। और उसमें मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का ये समझाना पड़ेगा। स्थूल इंद्रियां मतलब आंख नाक कान इत्यादि, ठीक है, और सूक्ष्म इंद्रियां हमारी मतलब मन बुद्धि अहंकार, इनका वो निर्माण करते हैं। इनका निर्माण हमने नहीं किया है, भगवान ने किया है, एक बात बड़ा स्पष्ट है। और इसके द्वारा क्या कराते हैं, वह भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, जीवों को ये गुणों का वह भोग कराते हैं। बड़ा स्पष्ट है, आप जानते हो कि भगवान निर्गुण है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान को इस प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान जीवों को भोग कराते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इसमें उदारता क्या है भगवान की, आप कह रहे हो कि तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान के कर्म बड़े उदार हैं। उस प्रश्न का उत्तर ये श्लोक दे रहा है, तो ये क्यों बोल रहे हैं आप, इसमें भगवान की क्या उदारता है? तो उदारता आप जानते हैं कि जीव भोग करना चाहता है, भगवान से विमुख रहना चाहता है, और इसकी भी व्यवस्था भगवान करके दे रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं इसको शरीर दूंगा तो मेरा भजन नहीं करेगा। यहां पर भी तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है उसको आटा दाल चावल कौन दे रहा है, स्टोर दे रहा है, नहीं स्टोर नहीं दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। हम लोग इतने सहज रूप से सोचने लगते हैं कि हमारा धन हमको अन्न दे रहा है, ऐसा नहीं है। अन्न तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आज तक जितनी भी डिस्कवरी हुई है, चावल कोई बना पाया है? प्लास्टिक का चावल बनाने का अलग बात है, लेकिन असली चावल नहीं बना पाया ना आज तक, कभी आपने सोचा नहीं इस तरह से? इतना डेवलपमेंट हो गया, चावल ही बना देते, इतना सब जो है अनाज पैदा करने की क्या जरूरत हुई, लेकिन आज तक चावल नहीं बना सके, सोचने वाली बात है। तो भगवान दे रहे हैं, और भगवान हम जब कहेंगे इंद्रिय दे रहे हैं तो ये मत सोचिएगा केवल इंसानों को दे रहे हैं, मच्छर को, मक्खी को, गाय को, बैल को, सबको दे रहे हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि दी किसने है, ये एक आश्चर्य की बात है। आंखें दी हैं देखने के लिए, क्या देखने के लिए, क्यों दी हैं, इसका प्रश्न का कोई प्रश्न ही नहीं करता, उत्तर की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ये बात यहाँ पे हमें श्लोक से मालूम चल रही है, भगवान ने क्यों दी है इंद्रियां, भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, उन गुणों को भोगने के लिए दी है। इसीलिए इंद्रियों की प्रवृत्ति भोगों में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं, भगवान ने बनाया इसीलिए है कि आप भोग करिए। लेकिन आप जानते हो कि इसके अलावा एक और कारण है जिसलिए इंद्रिय बनाई है, भगवान की सेवा करने के लिए। भाई कान ही नहीं होता तो आप सुनते कैसे भगवान के बारे में? ये रहस्य जो है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आता है। चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, वह ये इस बात को नहीं जानता है कि भगवान ने इंद्रियां दी किस लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए। वस्तुतः इंद्रियां दी हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन अब भोग भी करना चाहता है। और ये भी हमें जानना चाहिए कि जो जीव है वह अपनी शक्ति से भोग नहीं कर सकता है। जीव पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। जैसे पेट्रोल और पानी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार से जीवात्मा अपने कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्या कहा है, स्वतंत्र रूप से अगर कहे कि मैं भोग करूं, रसगुल्ले का स्वाद चख सकूं, ये संभव नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, जैसे पहले इससे पहले हम आगे बढ़े कि इस बात को समझ लेना चाहिए, ये सब ये समझ में आ रहा है कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका स्वाद हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमें करवा रहा है कोई। मैंने बोला था ना कि यह श्लोक समझने में इसलिए कठिन है क्योंकि ऐसा अनुभव होता तो है नहीं, हम रसगुल्ला खाते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिए उसमें हो क्या रहा है। क्या हो रहा है, मेरा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं, भगवान ने जिसकी सृष्टि करी, वह मुझे मेरे चित्त पे प्रभाव डालता है और मैं सोचता हूं कि जब मेरे जीव का संपर्क उसके विषय खाद्य वस्तु से हो रहा है और जीव में कुछ भी रिएक्शन हो रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर हम इस भावना से अलग हो जाएं, अपने अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग कर दें, तो ये भावना नहीं उत्पन्न होने वाली। तो ये भावना कौन उत्पन्न कर रहा है, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा करा रहे हैं। बहुत कठिन हो रहा है समझने में यार, सूक्ष्म इंद्रिया करती है, कुछ भी कराने वाले तो भगवान है ना। अगर मिथ्या अहंकार ही ना हो तो मैं जगत का भोग भी नहीं कर सकते। जैसे कि जो मुक्त पुरुष है उनको कभी इस जगत के भोग के बारे में भोगने में कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं आती कभी। और ये हम कभी सोचते नहीं कि जितनी भी चीजों का हम भोग कर रहे हैं वो सब जड़ है। और इस पर अगर और विचार करेंगे तो ये सब मेंटल कॉन्कॉक्शन है। मेंटल कॉन्कॉक्शन समझते हैं, मानसिक मान लेना कि मैं सुखी हूं। अभी मुझे अनुभव है कि मैं दोपहर में, मैंने सुबह थोड़ा कम प्रसाद लिया था और रात में दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर रहा था तो भूख कस के लग रही थी, तो सपने आए खाने के, तो खा तो जम के रहे हैं लेकिन भूख शांत नहीं हो रही, ये स्थिति है। फिर उठे तो लगा रहे हाँ भाई असली प्रसाद हम सामने है, उसके बाद खाएंगे तो फिर भूख शांत होती। कई बार ऐसा अनुभव हुआ होगा आप लोगों को, नहीं हुआ कभी? होता है कि भूख खा रहे हैं या प्यासे हैं, प्यास लग रही है पी रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान इस जगत में व्यवस्था करते हैं, इन गुणों से युक्त वस्तुओं को हम भोग कर सकें ये व्यवस्था बनाते हैं। अब कैसे हम करते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है, हम मेरे को भी समझ में एग्जैक्टली नहीं आता कि कैसे हम, मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, कैसे अनुभव कर रहे हैं हम लोग, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहां पे इतनी बात समझ में आ रही है कि व्यवस्था कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उदारता क्यों है भगवान की, क्योंकि अगर जीव भोग करना चाहता है, उसे विमुख भी रहना चाहता है, उसको भी उदारता से सारी व्यवस्था कर रहे हैं और ये भी व्यवस्था करते हैं कि वह भक्ति करके उनकी तरफ आ सके, उन्मुख हो सके। ये उदारता है भगवान की, क्या समझ पा रहे हैं आप? अरे भाई लड़का नहीं पढ़ रहा है या लड़का खराब है, उसको भी अगर पिता पालन कर रहा है तो पिता की उदारता है या नहीं है, यही बात बोले जा रहे। तो हम लोग कुछ लोग, अच्छा एक और मैं विचार कर रहा था, भगवान सृष्टि की और जानते थे कि सृष्टि करने के बाद कुछ लोग जरूर ऐसा हल्ला करेंगे कि कोई सृष्टि करता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वो भगवान निराकार है, फिर भी भगवान ने सृष्टि की। क्या आप ऐसे नहीं देखते कितने लोग भगवान को निराकार कह देते, सब कुछ कहते रहते हैं बाई चांस हो गया, कितना ज्यादा खराब लगेगा। सोचिए आप लोग ने इतना सुंदर प्रसाद बनाया और मैं बोलता हाँ अच्छा तो बना, लेकिन सब बाई चांस हो गया, कैसा लगता आपको? स्वाभाविक है कि आपको बुरा लगता है, इज़न्ट इट? अरे हमने इतनी मेहनत से बनाया है, आप कोई अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम ये तो मत बोलो कि हम निराकार है या बाई चांस हो गया। बाई चांस बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा ना, क्योंकि ऐसे तो प्राय खराब बनाते हैं लोग, लेकिन आज बाई चांस अच्छा बन गया, बताइए और कितना खराब लगेगा, कितनी खराब बात है। किसी ने अच्छा बनाया है तो उसके पीछे कोई सृष्टि करता है कि नहीं, इतनी सी बुद्धि बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि आप इतनी सृष्टि देख रहे हो कोई पीछे बनाने वाला है। तो यहां बोलना एकदम स्पष्ट, असौ का मतलब कोई और मत सोच लेना कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं, असौ मतलब यही वासुदेव, यही भगवान, यही परमात्मा इस जगत में, और कोई किसी को इंद्रिय नहीं दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही सबको भोग में लगा रहे हैं। मैं कहा से श्लोक तो समझ में आ गया, हम पढ़ते आगे। बहुत हाँ ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। इस संबंध में परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज की बड़ी सुंदर, बड़ी गंभीर उक्ति है कि जीव को भगवान इस प्रकार से भोग की प्रेरणा तो बचपन से ही देते हैं, पैदा होते ही, लेकिन वो उनका क्या संबंध है भगवान से उसके बारे में एकदम चुप रहते हैं। भगवान जब तक वह कुछ भक्ति ना करे भगवान को प्रणाम कर दे या भगवान का प्रसाद खाए, किसी तरह से भगवान की भक्ति से कोई संपर्क नहीं हो, तब तो भगवान कोई ज्ञान नहीं देते। और हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण है, अनादि काल से हम लोग उसमें फंसे हुए जगत में। कभी आप लोगों ने अनादि काल के बारे में सोचा है, कुछ मनन किया है? हाँ हाँ बोलने के लिए क्या ट्रेनिंग है कि हाँ हाँ हाँ। कभी आप सोचिए अनादि काल से हम इस जगत में है, और कितनी बड़ी परेशानी में फंसे, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे, उर्दू शब्द कहेंगे फजीयत, फजीयत समझते हैं? कभी सोचिए दोबारा जन्म लेना कितना कष्टकारी है, चाहे स्त्री के शरीर में, चाहे पुरुष के शरीर में, चाहे कुत्ता बैल बंदर कोई भी शरीर ले लीजिए, बहुत बड़ी एक ही शब्द है फजीयत है। और इसके लिए हम लोग को कितना छोटा, इससे बाहर निकलने के लिए कितना छोटा सा प्राइस को क्या कहा जाएगा, मूल्य है कि 16 माला का जप करना है। अरे तो बहुत ज्यादा है, 2 घंटा में जप कैसे कर सकता हूं? तो फिर अगले जन्म के लिए तैयार रहिए। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे, उनकी इलेक्शन ड्यूटी है, ये है वो है, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, खून पी रहे हैं, तकलीफ हो रही है, फिर भी क्या करते हैं? रवि प्रभु ऐसे में व्यक्ति को क्या करेगा जिसकी मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी है, रात में 10 बजे तक काम करना पड़ा? माइक दीजिए प्रभु जी को। नहीं ये बता सकते हैं कुछ क्या करना चाहिए, क्या करना है? करना है, दैट्स सिंपल, इजंट इट सिंपल, करना है, क्योंकि उनको परिवार चलाना है, एक स्वाभाविक सी बात है, कर्तव्य करना है। अब हमको मुक्त होना चाहते हैं तो क्या संघर्ष, ये संघर्ष नहीं है बताइए? और ये केवल एक एक एग्जाम्पल है, आप सभी लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कितने कितने हम लोग कार्य करते हैं जिसमें बहुत सारा संघर्ष होता है, तो यह मान लेते हैं हमें करना है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसी प्रकार से कमर कस करके हम चलें कि भाई ये अगले, ये आखिरी जीवन है मेरा, अब मैं दोबारा वापस आने की प्लानिंग तो नहीं है, अब पूरा प्रयास करते हैं कि हम पार हो जाएं। अब हमने सुना होगा, मैं आप लोग टीचर हैं, कि बच्चों को बोलते हैं बेटा 99% का ट्राई करोगे तो 75% तो आ ही जाएगा, और अगर 40% के लिए ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे। सुने हैं ना? तो पूरा प्रयास किया जाए, ज्यादा कुछ भी मेहनत नहीं है। मेरे गुरु महाराज बात में बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत भोग कर लिए भगवान ने, बहुत मेहनत करा ली हमसे, बहुत भोग कर ली, अब हमको वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। और वापस जाना ज्यादा आसान है बजाय इस जगत में रहने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैं क्या बात करने लगा था अभी, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, चलिए मिस हो गया पॉइंट। लेकिन इस जगत में हम दुख में रहने के लिए कितने संघर्षरत हैं, थोड़ा संघर्ष अगर भगवान की भक्ति के लिए करें तो कितनी आसानी से भगवान के धाम जा सकते हैं। यहां मेरे महाराज ये बोल रहे थे कि वी नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून ऑफ कलयुगा पीपल इज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर गुड फॉर्च्यून। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा सौभाग्य क्या है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने मात्र से, बोलने मात्र से हम भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य जीव चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, कुछ भक्त लोग नए भी हैं। देखिए स्थूल शरीर का अर्थ आप समझते हो, ये जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब हार्ड मास का शरीर, इसमें आंखें फिट हैं, कान इत्यादि हैं। सूक्ष्म शरीर इसके अंदर होता है जो मन बुद्धि और अहंकार का बना होता है। जैसे देखिए मेरा स्वेटर है वो दिखाई पड़ रहा है, अब अंदर का ये कुर्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो जो बाहर का स्वेटर है ये उसकी उपमा आप स्थूल शरीर से दे सकते हो, और जो अंदर का जो कपड़ा है वह हो गया सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में हमारी इच्छाएं लॉज हो जाती हैं, लॉज को क्या कहेंगे हिंदी में, इकट्ठी हो जाती हैं, संस्कार बन जाता है, और उसके अनुसार हमको अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है। कोई अगर बहुत बुरे कर्म करता है और उसकी मानसिकता वह मतलब असुर जैसी हो जाती है या शेर जैसी हो जाती है, मांस वांस खाता है, तो अगले जन्म में उसको मां शेर या कुत्ता इत्यादि के शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जितने सबके अलग अलग स्थूल शरीर दिख रहे हैं या स्थूल वृत्तियां दिख रही हैं, स्थूल वृत्तियां नहीं कहना चाहिए, स्वभाव दिख रहा है, तो वह उनके मन के संस्कारों के अनुसार होता है। जैसे लोग मुर्गा खा रहे हैं, गंदे संदे काम कर रहे हैं, तो उनको यह भी दर्द नहीं होता है कि देखो काटने से उन्हें कितना दर्द होता होगा। और जो भक्त है वो कभी सोच भी नहीं सकता इस प्रकार के कार्य करने के लिए। तो यही आप देख रहे हैं सूक्ष्म मन में अंतर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ नए भक्त लोग समझ पा रहे हैं सूक्ष्म मतलब मन इत्यादि और स्थूल मतलब हमारी इंद्रियां। मरने के बाद या तथाकथित मरने के बाद ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो हमको हरे कृष्ण मंत्र जप करना पड़ेगा। क्या कोई भक्त बता सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर को नष्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि अगर सूक्ष्म शरीर बना रहेगा, भोग की इच्छाएं बनी रहेंगी, तो फिर अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए शुद्ध करना है उसको। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। ये लाइन समझ में आ गई या कठिन हो रहा है? ये तो मैंने समझा दिया अभी आप लोगों को। जो मन में इच्छा होती है, जैसे मन में कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं लंबा होता तो सोचता हूँ जिराफ बन जाए, अगले दिन में जिराफ बन सकता है, लंबा हो गया है, ऊंट बन जाए, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। प्लस इच्छा के साथ साथ कर्म भी होता है। अब मैं कहूं कि भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो भगवान प्रकृति ये भी देखिएगा कि क्या उसके पास कर्म है इस प्रकार का। तो अगर कर्म है, कुछ पुण्य है और उसकी इच्छा मिला करके उसको फिर अगला शरीर दिया जाता है। यही बातें भी बोली जा रही है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। क्या कोई समझा सकता है इस बात को कि जीव क्यों अक्षम है? माइक पे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। कुछ आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। सारा बोलने का कार्य मैं ही करूंगा तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। यस,
हमारा सेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब समर्थन हर चीज भोगने के लिए।
रवि प्रभु बताइए, मत दीजिए माइक पे बोलिए। देखिए, आपको ऐसे समझाइए कि मुझे नहीं आता है। आप लोग ऐसे समझा रहे हैं कि मुझे पहले से पता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन आप समझाइए कि नहीं पता है तब किस प्रकार से। यस,
जीव भौतिक सुख प्राप्त करने में इसलिए अक्षम है क्योंकि जीव तो है सच्चिदानंद।
yes.
और ये जो यहाँ पे जो सुख है ये तीनों गुणों से मिलके बना।
वेरी नाइस। तो हमारी जो प्रकृति ही बिल्कुल अलग है और यहाँ का जितना सुख है वो सब भौतिक है, तो उसको जोड़ने के लिए जो लिंकिंग प्रोसेस है वो है मिथ्यांकार, जिसकी सृष्टि भगवान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि हम बोल गए और सब ऊपर से निकल गया। इस जगत में जो भी भोग हमने स्वीकार किए तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, और जबकि उसमें किसको सुख प्राप्त हो रहा है? सुख नहीं, या जो कुछ भी हो रहा है परिवर्तन हो रहा है केवल शरीर को हो रहा है, जबकि शरीर का आत्मा से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। तो ये मानना कि मैं शरीर हूं, ये किसके द्वारा हो रहा है? अहंकार के द्वारा, मिथ्यांकार। तो ये इसकी सृष्टि कौन किया? भगवान ने की। यही बात है बोल रहे हैं कि हमने तो सृष्टि नहीं करी है इसकी। हमने सृष्टि ना तो करी है और ना हम इसका विनाश कर सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ना तो मैं मिथ्यांकार की सृष्टि किया हूं और ना मैं मिथ्यांकार को विनाश कर सकता हूं। भगवान ही विनाश करते हैं और उसको वो हरि नाम के द्वारा होता है। हरे कृष्ण मंत्र को प्रभुपाद जी बताते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि व्यक्ति मिथ्यांकार की भावना से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद इस बात को बताते हैं। दूसरे स्कंद में कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति का सुख मिलता है तो इस जगत की प्रसिद्धि, इस जगत के भोग इत्यादि से उसका मन अपने आप ही निवृत्त होने लगता है। इससे मुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा।
इसको साधारण रूप से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भौतिक सुख की जो प्राप्ति करने में पूर्ण रूप से अक्षम है, जब निर्माण करता ही वही है, तो हम अपने अपने स्तर पे कैसे उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जब तक वहां से
हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भगवान निर्माण करता तो है, लेकिन स्वरूपगत स्थिति से जीव इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल अलग है। जीव में जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं, हम में आत्मा में जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं है। तो जड़ को भोगने की क्षमता जीव में है नहीं। तो जिसको इसको ऐसे ही समझा जाता है कि जीव को अज्ञान में डालना पड़ेगा। जैसे फिर वही सोचिए, हम स्वप्न बड़ी अच्छी चीज भान देते हैं, उससे हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। स्वप्न में हम देखते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, खीर खा रहे हैं। ऐसा सपना कभी देखा है आपने? सभी लोग देखते हैं कुछ खा रहे हैं। तो क्या वाकई हम स्वप्न में कुछ खा रहे होते हैं? नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम स्वप्न में कुछ खा रहे हैं। जब अच्छा, कभी स्वप्न में किसी को पैसा मिला है? आप लोग स्वप्न देखते नहीं, लग रहा बहुत थक जाते हैं। अच्छा चलिए, ऐसा कभी स्वप्न हुआ है कि आप एग्जाम लिख रहे हो और ये सपने तो आते हैं, मेरे को सपने आते हैं कभी कभी बुरे सपने की, एग्जाम लिख रहे हैं, अभी पता नहीं कौन सा एग्जाम दे रहा था मैं सपने में और मैं परेशान हो गया, मैं कह रही भाई एग्जाम का पेपर निकला जा रहा है और सॉल्व नहीं हो रहा है, और हम बिल्कुल कन्विंस होते हैं उस समय कि हम एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम नहीं लिख रहे, हम तो सो रहे होते। उसी तरह से इस समय भी हम सो रहे हैं, आप कहेंगे नहीं हम तो जग रहे, लेकिन नहीं, हम अपने स्वरूप को बिल्कुल भूले हुए हैं और इस भौतिक प्रकृति के स्वप्न में पूरी तरह से निमग्न है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर है, और फिर सोच रहे हैं कि शरीर के जो भोग हैं वो मैं भोग रहा हूं। इस सारी सृष्टि भगवान के द्वारा हो रही, इसको भगवान कहते हैं सर्वान पार्थ मनोगतान। ये जो इतनी भी इच्छाएं हैं ये मनगत है, मनगत मतलब मन के द्वारा उपज ली जाती है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। अभी देखिए फिलोसफिकल चीजें हैं, थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम आज दो श्लोक करके रुकेंगे, लेकिन इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि किस प्रकार से चल रहा है। इसीलिए देखिए, अगर केवल आहार निद्रा और भय और मैथुन में हमारा जीवन बीत जाता है तो हम असंतुष्ट महसूस करते हैं स्वाभाविक रूप से। अब मैं कई बार इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त लोग साधना करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने में एक अलग सुख की अनुभूति होती है ना, भगवान रोज नहीं करते कृपा, लेकिन कभी कभी कृपा करते हैं, इजंट इट, और वह जो सुख है वह आपको एक अनुभूति देता है, साक्षात अनुभव देता है कि ये जो जगत के सुख है इससे अलग सुख की अस्तित्व है। ये बात आप लोगों को अनुभूत है या मैं खाली बोल ही रहा हूं थ्योरी में? सबको अनुभूत है, सब लोग नम्र हैं, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, लेकिन समझ रहे हैं इस बात को। आप लोग जो भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं या हम लोग भी पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने में और श्रीमद् भागवतम की चर्चा में अंतर है। ये हम स्वयं अनुभव करते हैं, भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में आते हैं, isn't it? हम शुद्ध अपने आप को होता हुआ अनुभव करते हैं। तो ये सब बातें हम धीरे धीरे समझ पाएंगे इस प्रकार से आगे करेंगे। तो वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। अच्छा, ये समझ में आई? मैं यहां हृदय में बैठा हुआ हूं और मैं इच्छा करता हूं और भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे मैं भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, मैंने कई बार उदाहरण दिया है, तो मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन ये कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे आ रही है? अब देख लीजिए, इच्छा है समझने की, लेकिन वो समझ में कैसे आ रही है ये हमको नहीं पता। कितनी अद्भुत बात है ना। तो ये सब भगवान नियमन कर रहे हैं। एक संदेह होता हो सकता है, अरे भाई कोई पाप करता है तो आपने बताया था, पृथ्वी महाराज कहते हैं कि करने वाला, कराने वाला और प्रेरणा देने वाला, तीनों को बराबर लाभ होता है। तो आप कह रहे हो जीवों को भोग भगवान करा रहे हैं, तो जीवों को भोग कराते हैं और नरक जीव को भेज देते हैं, उनको भी नरक जाना चाहिए, उन्हें प्रेरणा दिया, उन्हें याद दिलाई और उन्हें सारी व्यवस्था करी। तो इसको अभी हमने गीता की चर्चा में बड़ा स्पष्ट सुना, इसको कहते हैं सन्निधि मातृणा। सन्निधि समझते हैं आप, सानिध्य शब्द समझते हैं, सानिध्य किसी के पास रहना। उसी प्रकार से जैसे ये माला है, अब अगर माला को मैं यहां पर रखता हूं थोड़ा दूरी में, और फूल की खुशबू, अगर मेरे को जुखाम नहीं है तो मैं उसकी खुशबू को महसूस कर सकता हूं, तो मैं क्या माला के संपर्क में हूं? मैं माला की सन्निधि में हूं? मैं सन्निधि शब्द को समझाने के लिए बोल रहा हूं, सानिध्य में पास में हूं लेकिन माला को स्पर्श नहीं कर रहा। उसी प्रकार से भगवान हृदय में रहते हैं, जीव उनकी सन्निधि में रहता है, वो जीव की इच्छाओं को देखते हैं और उसे कर्मानुसार वह उसकी व्यवस्था करते हैं उदासीन भाव से। इसलिए भगवान कभी निर्लिप्त नहीं होते, कभी भगवान किसी जीव के पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होते। समझ में आ रही बात? तो नियमन कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वह लिप्त बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ओके। अब ये भी कह सकते हो कि अरे भगवान इतने बुद्धिमान हैं तो अंदर ही बैठे बैठे दिमाग दे दें भाई कि अरे तू मेरा भजन कर, क्यों नहीं दिमाग दे रहे ऐसा? ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है, भगवान सबको या भगवान भक्ति डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते? 1% फ्रीडम, 1% तो पता नहीं, ऐसा कोई पता नहीं 1% दिया कि 2%, लेकिन ये बात सही है कि स्वतंत्रता दी, एक बात। लेकिन एक और कारण भी है, अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति देते तो भाई हम सभी लोग भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? स्पष्ट है। तब कहेंगे भाई गगन प्रभु को दे दिया और शिवकृष्ण दास जी को नहीं दिया। ये बात भगवान में वैषम्य दोष आया था, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। हाँ, भगवान में वैषम्य दोष समझते हैं, विषमता पक्षपात का दोष आता, तो इसलिए भगवान उदासीन बैठे रहते हैं, लेकिन वो प्रयास रहते रहते हैं। सन्निधि मतलब भगवान ये भी देखते हैं कहीं कदाचित उसके हृदय में मेरे प्रति सेवा करने की इच्छा आ जाए तो तुरंत सारी व्यवस्था कर दूंगा। कहीं गलती से भी उसने राम बोल दिया, राजमा बोल दिया, राजमा में जा हटा दीजिए तो राम हो जाता है, अरे थोड़ा राजमा की सब्जी लेके आना भाई, तो इस प्रकार से राम कहीं आ गया, हरि आ गया, अरे कृष्ण गोपाल स्टोर पे जाएंगे खाना खाने के लिए, तो ऐसे किसी तरह से नाम उच्चारण हो गया, उसको सुकृति बन गई, तो फिर भगवान उसे खींच करके अपने पास लेके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान का नाम आसे कदाचित उच्चारण हो जाने के मात्र से भी भगवान खींच लेते हैं, तब भगवान फिर धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी को क्या अच्छा नहीं लगता है, अब हरे कृष्णा करते ही हमको पसंद नहीं, क्या नहीं करते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हुए अच्छा नहीं लगता, तो मान लो ऐसे भी बोला है कि हरे कृष्णा नहीं, तो भी उसने हरे कृष्णा बोल दिया, तो इस प्रकार से हरे कृष्णा आज कर रहा है, धीरे धीरे करके फिर वह भक्त आगे बन जाएंगे। ठीक है, तो नियमन कर रहे हैं भगवान, लेकिन सन्निधि मात्र, सन्निधि समझ गए आप लोग, सन्निधि मात्र से उदासीन रहते हैं। अन्यथा आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवान से अभिन्न आप जानते हो, उसका अर्थ है भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है, यह एक इंटरेस्टिंग बात है। क्रिश्चियन धर्म में केवल ईसा मसीह को भगवान का पुत्र कहा जाता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। सर्व योनिषु कौन्तेया संभवन्ति मूर्तयः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। सभी इंसान, सभी जितने भी जीव, इंसान भी नहीं कहना चाहिए, जितने भी जीव, उनके पिता कौन है, भगवान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो है ईसा मसीह ही बेटे हैं और बाकी सब लोग बेटे नहीं हैं, ऐसा नहीं, सभी का अधिकार है। आज ही मैं सुन रहा था तो महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान के सुख पे सभी का अधिकार है, जैसे पिता की संपत्ति पे सभी बेटों का अधिकार होता है। अब बेटा स्वयं ही घर से भाग जाए तो क्या किया जाए, और फिर भीख मांगे, तो यह उसकी मतलब उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के दुख और सुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। इन दो लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवान, ये समझ में नहीं आता है लोगों को, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत चिंतित हैं। जब मैं बोला आप, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए चिंतित है कि कब ये मेरे तक उन्मुख होगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सब भगवान की स्वयं की वाणी है। बृहद भागवतामृत में वह एक जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान कहते थे हर जन्म में, मैंने पहले भी बताया था इस बात को, कि मैं हर जन्म में सोचा करता था कि तुम इस बार तो मेरी तरफ उन्मुख होगे, लेकिन तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो इस प्रकार से, और बड़ा आह्वान बोलते, स्वागतम स्वागतम, स्वागत है तुम्हारा, तुम एक छोटा सा जीव भगवान के धाम पहुंचा है तो भगवान स्वयं स्वागत कर रहे हैं। यहां पे भी अब हमको तो ऐसा अनुभव है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भक्तों ने ऐसे बताया है कि किसी के भी बच्चे होते हैं तो सभी से वो प्रेम करता है, ऐसा होता है क्या? मतलब मान लीजिए 3 हो 4 हो 6 हो 6 तो मेरे ख्याल से किसी के यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर 6-7 भी होते तब भी ये नहीं चाहता कि एक छठा मर जाए, सभी से प्रेम करता है। एक बात, दूसरा, एक तो ये तो सत्य घटना हमने सुनी, इस्कॉन में एक सन्यासी हैं, उनके उनकी माँ के 29 बच्चे हैं, जिनको एक दुख है, एक लड़के ने शादी नहीं करी, मतलब वो सन्यासी ने शादी नहीं करी, वो दुख था, बाकी सबने शादी कर ली, घर बसा लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बच्चे ने शादी नहीं करी तो उनको बहुत दुख है। तो कहने का अर्थ है कि एक दुख नहीं, वो तो सुख में है, लेकिन एक व्यक्ति को भी, एक बच्चे को भी दुख होता है तो माता पिता को दुख होता है। दुख होता है संबंध के कारण, अब ऐसा नहीं है कि उसका पेट में दर्द हो रहा है तो माँ के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चे से प्रेम है इस कारण से दुख होता है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ दुख भोगे, लेकिन आप जानते हो कि भगवान बहुत नम्र हैं, वो ऐसे आपको ठेल ठेल करके भगवान के धाम नहीं लेके जाएंगे। नहीं जाना चाहते, ठीक है, अगले जन्म में तैयारी करो, लेकिन साथ ही साथ सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा के रूप में हृदय में है सबके, कहीं उसने थोड़ी सी भी इच्छा कर ली कि भगवान के धाम जाना है तो वह इच्छा छुपी ना रह जाए, अन्य छुपी नहीं, अनदेखी ना रह जाए, अनदेखी समझ लेते हैं आप लोग। हाँ, इट शुड नॉट रिमेन नेग्लेक्टेड। तो ये भगवान के उदार कर्म है। और आप देख रहे हो यहाँ उदारता भगवान की, कि जीव चाहे वो मल खाने वाला सुअर भी बन जाए फिर भी उसके संग वो रहते। तो इस प्रकार से भगवान हमारे संग मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे आपके पति का नाम क्या, भूल गया मैं, प्रभु जी का नाम गिरधारी नहीं क्या नाम, लीलाधर प्रभु बता रहे थे कि बचपन में आप कुछ भक्ति करते थे, अब फिर आपको भगवान व्यवस्था कर दिया कि कम से कम प्रसाद की व्यवस्था तो हो जाए, भले बहुत जप ना हो लेकिन रोज प्रसाद खाने को मिल रहा है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। आप भरतपुर में ही चेक कर लीजिए कितनी पत्नियां हैं किसी की जो भोग लगाती हैं भगवान को। हमें सब बातें ऑर्डिनरी लगती हैं लेकिन खाने का भोग नहीं लगता ना, लगता है घर में किसी को दाल चावल सब्जी रोटी, मैं तो डाउट करूंगा। यानी आप तो डिवोटी बन गए लेकिन पहले तो देखिए सब लोग सात्विक है, मान लो मांस मांस नहीं खाते, चीनी दूध और अपना खूब थपड़ थपड़ के दाल चावल खाते। तो ये अज्ञान है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, जितने लोग बताते तुरंत स्वीकार कर लेते, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, राजस्थान में बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी नहीं पता है ना। तो किसी की ऐसे ऐसे से व्यक्ति से शादी हो जो भगवान का भोग ला के प्रसाद खिलाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, और वो भजन भी करने लग जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो खैर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम दूर हो और हमारे पास काफी समय हो तैयारी करने के लिए तो अच्छी बात है ना, हम आराम से सो सकते हैं। नहीं, हमारा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, स्वाभाविक है आपने एग्जाम दिए हैं, और एग्जाम पता ना चले और सडन पेपर आ जाए तो वो खतरा होता ना, फेल होने की संभावना अधिक होती। खैर हम लोग यहाँ पे क्या सीखे श्लोक में, कि भगवान सभी जीवों के शरीर में प्रवेश किए हैं, सबको भौतिक शरीर दिया है, उसमें वह उसको इंद्रियों और मन के द्वारा भोगों में प्रवृत्त करा रहे हैं और भोग करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, स्पष्ट है श्लोक, इसको स्टॉप करके फिर दोबारा शुरू करिए। लास्ट लाइन में क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, यही तो मैं बता रहा था ना कि भगवान लगे हुए हैं हृदय में कि किसी तरह से ये कुछ भक्ति की इच्छा कर ले तो अब मैं सीधे सीधे इसको भगवान की अपनी तरफ लेके आ जाऊंगा। उनका उद्देश्य यही है, एक भोग में प्रवृत्त कराना, और दूसरा हाँ एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, भोग में प्रवृत्त कराना, लेकिन भगवान ने ऐसा डिजाइन किया जगत को कि भोग में प्रवृत्त होकर के हम और अधिक असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे माता जी बता रही थी कि इतना पैसा, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि इतना सारा पैसे था कि हमें घिन आने लगी थी, क्या करें इस पैसे का, है ना। तो भले ही पैसा आया कुछ भी आया लेकिन तृप्ति नहीं होती है, और ये इन्हीं का अनुभव नहीं है। मैं बताया था इंडोनेशिया में माता जी, इनका खुद का बैंक है, खुद का बैंक, सोचिए कितना पैसा होगा, हमने बहुत देखा रेंज रोवर कहाँ 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 घूम रही थी, लेकिन उन्होंने ही मतलब अपना अनुभव शेयर किया कि हम पैसे से सुखी नहीं हुए। तब कहेंगे प्रभु जी आपको मिले नहीं ना इसलिए आपको पता नहीं। नहीं भाई, जिसको देख करके समझ लेना चाहिए, धन प्राप्त करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, केवल आवश्यकता है, बस जितना आवश्यकता उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आप में समझ पा रहे हैं, भोग में प्रवृत्त तो करा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी है, सबसे बड़ी व्यवस्था करें हमारे मन की, कि भगवान ने मन ऐसा डिजाइन किया है कि भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। आप देख लीजिए कहीं पे भी कितने ही भोग के बारे में सोचिए, वो एक भोग के बारे में नहीं सोच सकता, फिर छूट के कहीं और चला जाएगा, फिर छूट के कहीं और चला जाएगा, फिर छूट के और कहीं चला जाएगा। अरे भाई लोग संतान उत्पन्न करते हैं क्यों, किसी भी कारण से प्रेम हो, और कभी कभी अपनी संतान को बोलते हैं अरे अच्छा होता मैं तेरे को जन्म ही नहीं देता। क्यों, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते है कि नहीं, कहां से पैदा हो गया, तब तुमसे पैदा हुआ और कहां से पैदा हुआ। लेकिन तो देख लीजिए, हम सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है हमारा बच्चा, हमको बड़ा सुख देगा, लेकिन वही हमारा जो है दुख का कारण बन जाता है। और इतना बात समझ में आ रही है कि जो वस्तु हम सोच रहे थे हमको बड़ा सुख देगी, भौतिक वस्तु, बाद में बोरिंग हो जाती है। नहीं आपको ऐसा लगता? ये तो अनुभव है ना, अनुभव, क्या करें इसका। लेकिन वही वस्तु अगर हम भगवान की सेवा के लिए नियोजित करते हैं तो बड़ा उत्साह आता है। ये सब आप लोग समझते नहीं हो क्या? अरे कुछ नहीं तो बुद्धि को ले लीजिए, बुद्धि तो फ्री की चीज है, जब बुद्धि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो कितना सुख लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बात भगवान की हमको समझ में आई, बड़ा अच्छा लगता है, श्लोक समझ में आया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं। तो आप समझ पा रहे कैसे प्रेरित कर रहे हैं भगवान, भोग तो व्यवस्था दे रहे हैं लेकिन वो ऐसा सेटिंग किया हुआ है कि भोग से जीव संतुष्ट नहीं होगा, तो धीरे धीरे ठिल ठिल करके, ठिलना समझते हैं मतलब, हाँ धक्का लगा लगा करके वह भगवान की तरफ उन्मुख होता है। कुछ और पूछना, समझ में आ रहा है ना? और अंततः तो भगवान भक्तों की व्यवस्था कर देते हैं तो सीख जाते हैं।